नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। अपने पिछले एपिसोड में हमने डिस्कशन किया डॉक्टर गिरीश पटेल से राइट थिंकिंग एंड पावर ऑफ थॉट्स के बारे में। आप जानते हैं कि पावर ऑफ थॉट्स जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के अंदर। थॉट्स हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं, हमारे सिचुएशंस जो परिस्थितियां हैं जिन पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा रिएक्शन प्रोएक्टिव है या नेगेटिव रिस्पॉन्स है उसको डिटरमिन करते हैं। इसके बारे में हमने डॉक्टर साहब से डिस्कशन किया। पर क्या अपने थॉट्स का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? जो उन्होंने हमें विभिन्न प्रकार के थॉट्स बताए, क्या पॉजिटिव थॉट्स हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं या नेगेटिविटी से पॉजिटिव थिंकिंग, राइट थिंकिंग और एलिवेटेड थिंकिंग कैसे हम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? हमने अपने स्टूडियो में फिर आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश पटेल को। डॉक्टर साहब, हम आपसे अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पर हम ये आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, राइट थिंकिंग है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये इतना ईजी है करना?
वास्तव में ईजी है अगर आप उसको समझ ले ठीक से। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करना है, पॉजिटिव कर्म भी करने। यह सोच लो कि जो कुछ भी होता है उसमें से मुझे कोई ना कोई फायदा ढूंढ करके काम करना। इसका एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब लोकमान्य टिळक को 6 मास की जेल की सजा हो गई। उनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ उनको देशभक्ति के आर्टिकल है वो अपने अखबार में लिखे थे। और वो शर्तें भी बड़ी कड़ी थी कि आप जेल में किसी को भी नहीं मिल सकते हैं, 1 मास में सिर्फ एक ही पत्र लिख सकते हैं। तो जो उन्होंने पहला पत्र अपने घर लिखा, पता है उसमें क्या लिखा? उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की कि वे बहुत सता रहे हैं, किसी को मिलने नहीं देते हैं। लेकिन जो पहला पत्र उन्होंने घर पे लिखा उसमें लिखा कि ये जेल है ना, वो ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है, सारा समय मैं ध्यान करता हूं। तो ऐसे उसी परिस्थिति का उन्होंने बहुत बड़ा फायदा ले लिया और उतने समय में अच्छा ध्यान करने लगे। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो इसके बारे में शिकायत करता रहता,
नेगेटिव थिंकिंग उसमें।
तो इसलिए पॉजिटिव कर्म करना भी पॉसिबल है अगर उसका एसेंस हम समझ ले।
तो डॉक्टर साहब, ये जो राइट थिंकिंग होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, इनमें कितना फर्क है?
वास्तव में राइट थिंकिंग तो करना ही है 100%, क्योंकि हर व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा कि भी समस्या जैसी है वैसी ही उसको देखूं, विकृत रूप क्यों दे दूं?
जो जैसा है, परिस्थिति जैसी है, उसको उसी रूप से देखो,
क्यों उसको हम विकृत रूप दे? पॉजिटिव थिंकिंग कोई कह सकता है कि जब डिसएडवांटेज है तो मैं एडवांटेज के बारे में कैसे सोचूं?
मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर कोई मनुष्य या कोई बच्चा जो है, कोई कुछ लोग असफल होते हैं, कोई बच्चा अपने एग्जाम में फेल हो जाता है, तो अब उसको आप पॉजिटिव थिंकिंग करने को बोलें तो ये बात थोड़ी जस्ट इजी नहीं है?
नहीं, तो भी वो कर सकता है अगर ये सोचे पॉजिटिव थिंकिंग में कि इससे भी कुछ सीखने को मिला। पॉजिटिव थिंकिंग के कई अर्थ है, सिर्फ ये नहीं कि एडवांटेज को ढूंढना है।
जी हाँ,
पॉजिटिव थिंकिंग का यह भी अर्थ है कि उससे जो आपको शिक्षा मिली वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार किताबें पढ़ करके या तो प्रवचन सुन करके हम बहुत कुछ नहीं सीखते हैं, जो हम सीखते हैं वो अपने अनुभव से सीखते हैं। जब आप एक बार आपको ठोकर लगती है और उससे कोई बात आपको सीखते हैं, वो आपको जीवन भर याद रह जाती है। तो इसलिए वह भी कम से कम सोचना कि भले समस्या आई परंतु यह समस्या से कोई नई बात मुझे सीखने को मिली, वह भी एक प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग है। या तो कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का यह भी अर्थ है कि मुझे सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, समस्या का पार्ट नहीं बनना है। यहां भी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहते हैं कि एक बहुत बड़े जंगल में थोड़े से अच्छे लोग थे और 90% बुरे लोग थे। उन बुरे लोगों ने आग लगा दी और जो अच्छे लोग थे उनको पकड़ पकड़ के उस आग में डाल रहे थे। तो अधिकतर सभी तमाशा देखते थे। सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया थी जो नजदीक में तालाब से पानी भर करके वो आग के ऊपर डाल रही थी। तो सारी जो पंछी आदि वहां इकट्ठे हो गए थे वो हंसने लगे कि क्या बेवकूफ है, इसको इतनी भी अक्कल नहीं है कि ये बूंद बूंद पानी से कोई आग बुझने वाली नहीं है। तो जब चिड़िया ने सुना तो उसने कहा कि मुझे भी पता है कि बूंद बूंद पानी से आग तो नहीं बुझेगी, परंतु एक दिन इतिहास लिखा जाएगा। तब 3 प्रकार के लिस्ट होंगे। एक तो आग लगाने वालों का लिस्ट होगा, दूसरा है तमाशा देखने वालों का लिस्ट होगा, और तीसरा होगा कि जो आग बुझाने में मदद कर रहे हैं उनका लिस्ट होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम है तो आग बुझाने वालों की लिस्ट में आए, इसलिए मैं ये काम कर रहे हूँ। बस इतना कह के वो अपना काम करने लगी। कुछ देर हुई तो वहां से एक फरिश्ता गुजरा, उसने देखा कि वैसे आग लगी है, लोग लड़ रहे हैं, तो कोई असर नहीं हुई। सोचा कलयुग में तो ऐसा होता ही रहता है। परंतु जब उसकी नजर गई कि छोटी सी चिड़िया इतनी मेहनत कर रही है आग बुझाने की, तो उसका हृदय द्रवीकरण हो गया और उसने बारिश कर दी तो आग बुझ गई।
तो मतलब पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसकी इतनी पावर है। और इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि अगर हम अपने पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी इससे प्रेरित होता
है,
क्योंकि हमारे पॉजिटिव संकल्प दूसरे को छूते हैं, वो व्यक्ति भी हमारे साथ सहयोगी बनता है और हमारी लाइफ के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर भी और समाज के अंदर भी एक चेंज आता है।
तो ये कि भी हमें सोल्यूशन का पार्ट बनना,
सोल्यूशन
बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर आप सोल्यूशन का पार्ट नहीं है तो यू आर अ प्रॉब्लम। तो हमें सोल्यूशन का ही सदैव सोचो कि भी समाधान का मैं हिस्सा बनूं, मुझे प्रॉब्लम का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है, तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव थिंकिंग करने लगेंगे।
तो डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक निष्कर्ष जो हम निकाल सकते हैं वह यह है कि जैसी भी परिस्थिति है उसको फ्लेयर अपना करें।
बिल्कुल।
और अगर वो भारी परिस्थिति भी है तो उसको हल्के रूप से देखकर उसका सॉल्यूशन निकाले, तो भारी परिस्थिति भी देखा जाए तो हल्की बन जाएगी, या कहें तो राई से रुई बन जाती है, बिल्कुल, और उड़ जाती है परिस्थिति, निकल जाती है,
उसका एडवांटेज भी ले लेंगे,
एडवांटेज भी उसका हम ले लेंगे, एक लर्निंग लेसन भी हो जाता है और एक मेंटली स्ट्रांग, एक अंदर से हिम्मत भी आती है कि ऐसी परिस्थिति से हम जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो परिस्थितियां हैं और ये जो सिचुएशंस आती रहती हैं, पर हमारे दर्शक ये जानने में बहुत उत्सुक होंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग, राइट थिंकिंग और एलिवेटेड थिंकिंग, इसका एक प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, उसके लिए कोई हमारी अप्रोच है, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है, कुछ स्टेप्ड अप्रोच है, इसमें मेडिटेशन का क्या रोल होता है, रिलैक्सेशन का क्या रोल होता है, किस तरह, क्योंकि आप इन चीजों को अपने जीवन में आपने अनुभव भी किया है, अनुभव भी किया है और बहुत लोगों को आपने अनुभव कराया भी है, तो इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे।
पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि भी राइट थिंकिंग आप तब कर सकोगे, तब सोचोगे कि रॉन्ग थिंकिंग क्या है,
रॉन्ग थिंकिंग,
और अलग अलग तरीके से हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं।
डॉक्टर साहब, आप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहे थे कि राइट थिंकिंग के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रॉन्ग थिंकिंग क्या होती है, तो आप क्या बताना चाहेंगे?
हाँ जी, कई एग्जाम्पल्स के द्वारा हम यह स्पष्ट करेंगे कि भी कैसे हम अलग अलग तरीके से रॉन्ग थिंकिंग करते हैं, और एक बार यह समझ में आ जाएगा तो फिर दर्शक अपने आप उसको राइट थिंकिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो है जिसको कहते हैं ऑल या नन थिंकिंग, कि व्यक्ति एक्सट्रीम में सोचता है। एक डॉक्टर थे, उनका बेटा 10वीं कक्षा में था, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि देख बेटे, 95% आने चाहिए, मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो उससे कम नहीं चलेंगे, चलो 90 तक आएंगे तो ठीक है, परंतु उससे कम आए तो तुम बेकार के हो। तो उस लड़के ने कोशिश तो की, परंतु उसके 88% आए। तो पिता ने उसे क्या उल्टा सीधा सुनाया कि मैं किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, कि मेरे बेटे के 88% ही आए, ऐसा बहुत कुछ कहा। तो लड़का एकदम साइलेंस में चला गया, 2 दिन तक कुछ नहीं बोला, और 3रे दिन वह पागल हो गया, उसे सिजोफ्रेनिया की बीमारी हो गई। कई साइकेट्रिस्ट ने उसे ट्रीट किया है परंतु ठीक नहीं हो पा रहा है। तो भले एक रेयर एग्जाम्पल है, परंतु देखेंगे कि ऑल और नन थिंकिंग से क्या असर होती है,
राइट थिंकिंग के। हाँ, हम अगर देखें तो ऑल और नन जैसा एग्जाम्पल आपने दिया, तो इस लेवल की थिंकिंग से शायद तनाव ऑटोमेटिकली हमारी जीवन और इतना प्रेशर आ जाता है, और बच्चों के ऊपर जैसे आपने बताया, बड़ों के ऊपर भी, कि वो कूप अप नहीं कर पाते
इससे,
और एक नेगेटिव रिएक्शनों के फिजिकल मैनिफेस्टेशन
हो सकते हैं। और इसमें राइट थिंकिंग क्या होता, अगर वो बच्चे को ये कहा जाता कि बेटे हमारी एक्सपेक्टेशन 90 की थी कम से कम, तुम्हारे 88 आए, चलो हम देखते हैं कहां गलती हुई, तुम अपनी स्टडी टेक्निक्स को कैसे सुधार सकते हो, हम तुम्हें कैसे मदद कर सकते हैं,
कुछ और ऑप्शंस उस बच्चे को दे सकते हैं।
तो अगर वो कोशिश की होती तो HSE में उसके 92 या 95 भी आते।
तो बैलेंस्ड अप्रोच, मतलब बायस्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि वी वांट दिस और नथिंग, एक बैलेंस पूरा लगाएं और जितना हमें मिले उससे हमें।
और देखिए, जैसे मैंने आगे भी चर्चा की थी कि लाइफ इज डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्रे, तो जो शेड्स है डिफरेंट, उसको हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा जो जनरली आमतौर पर माना जाता है वह है मैग्नीफाइंग, कि हम छोटी बात को बड़ी बना देते हैं। तीसरा है जिसको कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन, जब कोई भी बात हो तो तुरंत हम जंप करते हैं कि भी ऐसा ही है इसका अर्थ। जैसे कि एक बार एक प्रेसिडेंट थे कंपनी के, अपनी ऑफिस में बैठे थे सवेरे सवेरे, तो एक यूनियन लीडर आया और सेक्रेटरी को कहा कि साहब को मिलना है। तो जैसे सेक्रेटरी, उसको बाप रे, सवेरे सवेरे झंझट आ गई, ये यूनियन लीडर आएगा तो मेरा माथा खाएगा, मुझे परेशान करेगा। तो उसने कहा, उसको कह दो कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, थोड़ी देर के बाद आए। तो वापस एक घंटे के बाद आया, फिर से सोचा कि अरे बहुत सीरियस बात होगी, बार बार आ रहा है। तो उसको कहा, उसे कह दो कि साहब मीटिंग में बिजी है, कुछ देर के बाद आना। ऐसे दो तीन बार हुआ।
जी हाँ।
फिर एक सप्ताह तक वो दिखाई नहीं दिया। एक सप्ताह के बाद एक बार रास्ते में मिल गया तो उन्होंने पूछा, अरे भैया क्या काम था? उन्होंने सोचा, देखू तो से उसका क्या काम था, बार बार आया था। उसने कहा, नहीं नहीं साहब, वो तो काम हो गया। फिर भी उन्होंने पूछा, बताओ तो सही, उस समय उस दिन क्या कहा था तुमको? तो नहीं नहीं सर, वो तो काम हो गया, अब तो कुछ नहीं है। फिर भी उन्होंने परसिस्ट किया,
बताइए।
तो यूनियन लीडर ने कहा कि सर, मेरे बेटे की शादी थी तो मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया था, लेकिन कल ही शादी तो हो गई, तो इसलिए आज मैं ड्यूटी पर आया हूं। तो देखिए, बिकॉज ही जंप्ड ऑन कंक्लूजन, कि भी यूनियन लीडर मतलब सर खाने वाला आदमी, तो एक बहुत अच्छा मौका गंवा दिया।
और इसमें डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और इसमें देखा भी जाए कि अक्सर हम अपनी जिंदगी में एक वकील और जज वाला एटीट्यूड लेते
करते हैं।
वकालत करते हैं दूसरों की और जज जजमेंट देते हैं
दूसरों
पे। किसी को लेबल कर देंगे कि ये है ही ऐसा, ये परिस्थिति है ही ऐसी। तो ये लेबलिंग और ये जो वकालत और जज वाला एटीट्यूड है, ये काफी गलत, वेरी हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए।
बिल्कुल ठीक है।
तो जजमेंट और ये मैग्नीफाइंग का जो एटीट्यूड है हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली।
और एक बात ये भी होती है जिसको हम कहते हैं कि डिसक्वालीफाइंग द गुड।
बिल्कुल,
कोई नहीं अच्छी चीज होती है,
सही बताया,
लेकिन उसको भी हम डिसक्वालीफाई कर देते हैं। कि जैसे एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, एकदम डिप्रेस्ड था, ऐसा बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूं, क्या हुआ? तो कहा कि मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मुझे भी लगा इतना ज्यादा नुकसान हो गया, इसको कुछ असर हुई होगी। तो उसकी वाइफ कहते, नहीं नहीं साहब, इसको इतना नुकसान नहीं हुआ है। क्या हुआ है पता है? कहते कि भी हमने 2 साल पहले शेयर मार्केट में 5 लाख रुपए लगाए थे, तो जब शेयर मार्केट बहुत बढ़ने लगा था तो उसके 20 लाख हो गए थे, तो गिनती का 20 लाख है। कि फिर अचानक शेयर मार्केट डाउन हो गया तो उसके 10 लाख हो गए, तो अभी भी हमको 10 लाख मिले हैं, तो 3 साल में 5 लाख के 10 लाख हो गए। हाँ, कोई भी बैंक इतना इंटरेस्ट नहीं देगी,
लेकिन
फिर भी वो डिप्रेस्ड हो गया।
तो प्रॉब्लम छोटी थी लेकिन उसे मैग्निफाई,
डिसक्वालीफाइंग द गुड वॉज देयर, हिज मनी हैड बिकम डबल, लेकिन वो तो वो काउंट कर रहा था कि भाई ये मेरे कम हुए
हैं उसको,
वास्तविकता को उसने नहीं देखा,
नहीं देखा उसको काफी।
कई बार वी डिसक्वालीफाई द गुड, विच इज ऑल्सो नॉट एन राइट वे ऑफ डूइंग।
जी हाँ।
और एक चीज है जिसको कहते हैं फ्लाई मेंटालिटी।
जी हाँ।
कि जैसे मक्खी, यहां पर आप लड्डू रखो और बाजू में गंदगी रखो तो मक्खी गंदगी पे ही बैठेगी। तो कहते जीवन भी ऐसा ही है, उसमें भी अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं, लेकिन जिनकी फ्लाई मेंटालिटी है वो तुरंत बुरी बात को पकड़ता है और उसको सोच सोच करके वो दुखी होता है।
और देखा भी है कि अगर हम किसी व्यक्ति में बुराई देखना चाहें, किसी परिस्थिति में बुराई देखना चाहें, तो बुराई देखना तो बहुत आसान काम होता है, और किसी व्यक्ति में या किसी परिस्थिति में अच्छाई देखना चाहें तो उसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन उसे पकड़ते हैं तो हमें भी जो स्ट्रेस है और तनाव है वो काफी कम हो जाता है और लाइफ बड़ी इजी हो जाती है,
और हम
थॉट्स भी पॉजिटिव हमारे आते हैं।
बिल्कुल, हम कर भी सकते हैं,
कर भी इजीली सकते हैं।
और एक तरीका है जिसको कहते हैं नॉटिंग। नॉटिंग मतलब कि अधिकतर हम फोर्सिबली कुछ चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं।
जी हाँ।
और कई बार ये देखा गया है कि भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं और बाजू में टीवी चल रहा है, तो आपका ध्यान वो पूजा पाठ में तो होता ही नहीं है, सारा समय टीवी के सारे डायलॉग आपको बहुत क्लियरली सुनाई देते हैं। क्यों? क्योंकि आप फोर्स करते हैं कि मुझे टीवी नहीं देखना है, या तो टीवी में मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए, वो मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए। ऐसे फोर्सिबली आप करते हैं तो ज्यादा ही वो सुनाई देता है।
जी हाँ।
तो इसके लिए नॉटिंग भी कभी भी नहीं करना है। नॉटिंग के बदले हम मन को टर्न करें, तब यह सोचे कि मुझे अभी मैं ये ध्यान कर रहा हूं तो ध्यान में बुद्धि को लगानी है,
इजी गोइंग अप्रोच होनी चाहिए, फोकस्ड अप्रोच होनी
या
चाहिए।
तो व्हाट यू डोंट वांट वो नहीं सोचो। आज व्यक्ति सोचता है कि भी जो नहीं करना है, परंतु क्या करना है वो सोचो,
क्या करना है।
कभी सोचे कि भी अभी तो मुझे परमात्मा में ध्यान लगाना है,
या ये भी कहें कि वन थिंग एट अ टाइम हमें करनी चाहिए, या वो उस टाइम पे हम जो कार्य कर रहे हैं उसे डाइवर्ट ना होके उस कार्य पे पूरा ध्यान
दे,
क्योंकि परिस्थितियां हमेशा विपरीत आएंगी और उस वक्त बाधाएं भी आएंगी, लेकिन उनकी तरफ ना इतना ध्यान देके
और दूसरा भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान ना दे, आपका जो गोल है
उसकी तरफ,
उस गोल को देखते रहे तो ऑटोमेटिक जो राइट थिंकिंग,
अर्जुन की आंख की तरह जैसे बताया कि टारगेट शोर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो मुझे अचीव करना है उसकी तरफ हम करें, तो थॉट्स बड़े फोकस्ड और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स बड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है।
और एक छोटी सी बात है कि आपको, हमको एक चार्ट रखना चाहिए, अगर थोड़े दिन भी आप ये चार्ट रखो तो ऑटोमेटिक राइट थिंकिंग करने लगेंगे
हर व्यक्ति को
अगर छोटा सा पेपर में चार्ट रखे, जिसमें एक कॉलम में तो ये लिखे कि भी क्या समस्याएं आई सारे दिन में, क्या प्रॉब्लम्स आए,
हर व्यक्ति ये नोट करे
छोटे छोटे भी प्रॉब्लम्स नोट करे कि सवेरे आपको आपके सॉक्स नहीं मिल रहे थे, कई लोग उसी में अपसेट हो जाते हैं कि सॉक्स नहीं मिल रहे हैं,
बिल्कुल,
या तो ऑफिस में गए तो सारा अस्त व्यस्त पड़ा था तो आपको प्रॉब्लम हुआ, ऐसे 10-12 जितनी भी समस्याएं हुई ये सारी लिखो कि भी प्रॉब्लम क्या था, फिर ये लिखो कि वो प्रॉब्लम के कारण आपको फीलिंग कैसी हुई, नहीं आपको गुस्सा आया या तो नर्वस हो गए, डिप्रेस्ड हुए, क्या फीलिंग हुई वह लिखो, फिर ये लिखो कि अब रॉन्ग थिंकिंग मैंने क्या किया, जो अलग अलग तरीके बताए उसमें वह कहां फिट होता है, क्या मैंने मैग्निफाई किया, क्या मैंने ऑल और नन अप्रोच अपनाया, मैं एक निर्णय पर कूद पड़ा, मैंने किसी को लेबल किया गलत रीति से, फ्लाई मेंटालिटी हुई, नॉटिंग हुआ, क्या हुआ वो लिखो सचमुच, फिर ये लिखो कि राइट थिंकिंग क्या होता, इसी परिस्थिति में अगर मैं राइट थिंकिंग करता तो क्या होता? और मैं राइट थिंकिंग करता तो मुझे कैसा फील होता, बस इतना लिखना भी शुरू कर दो। मैंने कईयों के साथ ये अभ्यास किया है कि आप एक सप्ताह लिखने भी लगो तो एकदम कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर जब परिस्थिति आएगी तुरंत याद आएगा कि नहीं ये तो रॉन्ग थिंकिंग है, मुझे राइट थिंकिंग करना है।
डॉक्टर साहब इस चार्ट जो आपने बताया ये काफी प्रैक्टिकल चार्ट हमें लगता है, क्या आप एक बार रिपीट करेंगे और वो जो 7 पैरामीटर्स हैं, 6 जो वेस्टफुल थॉट्स के हैं, नेगेटिव थिंकिंग के, वो भी आप रिपीट करेंगे ताकि हमारे दर्शक नोट भी कर पाए।
बिल्कुल। पहले तो मैं बताता हूँ कि रॉन्ग थिंकिंग क्या क्या है, जिसकी हमने चर्चा भी की,
कौन सी थी
कि भी एक तो है मैग्नीफाइंग, जो बड़ा सिंपल है, हम राई का पहाड़ बना देते हैं, दूसरा है ऑल या नन थिंकिंग, एक्सट्रीम में व्यक्ति सोचता है, तीसरा है लेबलिंग कि हम लेबल लगा देते कि भाई बेटा ये लड़का तो बुद्धू है, ये बहुत स्मार्ट है, वो आपने लेबल लगा दिया, चौथा है जंपिंग टू कंक्लूजन, कोई बात में आप कंक्लूजन पर गए, पांचवा है नॉटिंग मतलब अनफोर्सिबली ट्राइंग टू अवॉइड, सिक्स्थ इज फ्लाई मेंटालिटी, तो इसमें से हमें देखना चाहिए कि भी कौन सी एक बात को मैं रॉन्ग,
कौन से विचार है, फीलिंग क्या हुई और उस पे हमारा नेगेटिव जो है किस कैटेगरी में हम फेस
कर रहे हैं,
पॉजिटिव उस पे थॉट क्या रहता है और उसके हमें फीलिंग कैसे, तो ये तो काफी एक अच्छी एक्सरसाइज।
इसके अलावा भी 6 के अलावा भी आपको लगे कि कोई और कैटेगरी में आपने नेगेटिव सोचा।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये हमें बताया, एक अप्रोच बताई, तो आप इतने सालों से, 30 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएटेड रहे हैं और आपने राजयोग मेडिटेशन का अपने जीवन में लाभ लिया और हजारों लाखों लोगों को भी ये चीज सिखाई है, तो क्या आप ऐसी कोई टिप दे सकते हैं, क्या रोल है इस मेडिटेशन का, ऐसा ब्रीफ में आप हमें कुछ बताएं कि मरीजों का या व्यक्तियों का, जो लोग हम इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनको एकदम थॉट के अंदर पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या मेडिटेशन में इतनी पावर है जो थॉट्स को पूरी कंट्रोल कर सकती है?
क्योंकि मेडिटेशन ही थॉट ट्रांसफॉर्मेशन है अल्टीमेटली,
जी,
थ्रू थॉट्स वी आर गोइंग बियॉन्ड थॉट्स, और इसके 5 स्टेजेस है, अगर वो 5 सिंपल स्टेजेस पता चल जाए तो हम सहज ही ध्यान कर सकते हैं।
ये काफी अच्छी एक्सरसाइज रहेगी अगर आप 5 इजी स्टेजेस बताएं।
हाँ जी हाँ, फर्स्ट है इंटरनलाइज, कि अंदर देखना, पहले मैं 5 बता देता हूँ, फिर उसका वर्णन भी करे कि हमें अंदर जाना है,
जी।
दूसरा है चैनलाइज, कि उसे मोड़ना है,
जी हाँ।
तीसरा है विजुअलाइज, कि चित्र भी निर्माण करना है, चौथा है डिविनाइज कि उसमें दिव्यता को भी भरना है, और 5वां है रियलाइज अर्थात कि उसका अनुभव भी करना है। तो 5 जो स्टेप्स है, पहले तो आज हम चंद्र तक जा करके भी वापस आ गए, परंतु हम 1 इंच भी अंदर नहीं जा रहे हैं,
जी बिल्कुल,
तो ध्यान के लिए जरूरत है कि हम थोड़ा अंतर्मुखी बने, हमारे ही विचारों को देखे, हम अपनी फीलिंग्स को भी देखे, ऐसे थोड़ी भी अंतर्मुखी होंगे तुरंत विचारों की गति भी शांत होने लगेगी। फिर दूसरा स्टेप है चैनलाइज, कि उससे विचारों को हमें दिशा देनी है। एक बार हम दिशा देते हैं तो रिपीटेशन खत्म हो जाता है
जी हाँ।
कि नहीं, एक ही बात को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो वह
हानि करती है।
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कहते कि दो बुद्धिस्ट साधु थे, कहीं पर जा रहे थे रास्ते में, एक गांव में से एक छोटी सी नदी थी, एक लड़की भी उसे पार करने की कोशिश कर रही थी तो उसे दिक्कत होती थी, तो एक साधु को दया आई तो उसको उठा करके वह नदी के उस किनारे तक ले गए और वहां उसे छोड़ दिया। तो जो दूसरा साधु था बड़ा नाराज हो गया, कुछ बोला नहीं, लेकिन दो दिन तक बड़ी नाराजगी प्रदर्शित करता रहा। दो दिन के बाद एकदम गुस्से में आ गया, कहते तुम कैसे बेकार के आदमी हो, हमारे धर्म में तो लड़की का मुंह भी नहीं देखना होता है, लेकिन तुम इतने नीच हो कि अपने उसको उठा के उस पार तक रख दिया, तुमको जरा भी शर्म नहीं आई, बहुत कुछ उसे सुनाया। तो दूसरा साधु सुनता रहा, फिर जो उसने पूरा किया तब कहता है भैया देख, उससे तो जरूरत थी तो मैंने मदद की और मैं उस बात को पूरा भूल गया, लेकिन तू अभी भी दो दिन के बाद भी उस लड़की को उठा के घूम रहा है। तो मेरे से तो ज्यादा तेरे मन पर बुरी असर हुई है।
जी,
तो ऐसे रिपीटेशन हार्मफुल है। चैनलाइज में क्या होता है कि हम उसे मोड़ देते हैं। और एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन क्या है, स्पिरिचुअल डायरेक्शन में इसे मोड़ना है,
नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से उसे एलिवेटेड, जैसे आपने बताया। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है मच हायर देन राइट एंड पॉजिटिव थिंकिंग, एलिवेटेड
थॉट्स, थिंकिंग, हर बात को विजुअलाइज करना। कहा कि भी हमारे में वो आत्मा इनर लाइट है, तो उसका भी चित्र निर्माण करो कि सचमुच एक दिव्य ज्योति है, या तो आत्मा वो एक सितारे की तरह है, तो उसे जितना आप अच्छा पिक्चर क्रिएट करेंगे ज्यादा
उतना एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे, परमात्मा की भी एक
बारे में भी वो विजुअलाइज करे तो भी उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर है डिविनाइज। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम आत्मा परमात्मा को नहीं माने तो ध्यान नहीं कर सकते हैं? बस शायद ध्यान कर सकते हैं, लेकिन फायदा उतना ही कम होगा।
कम होता है
जब आप डिविनाइज करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत, आपने 2% मेहनत की, फायदा आपको 80% होता है।
जी हाँ,
तो इसके कारण डिविनाइज भी करना चाहिए।
जी हाँ, और लास्ट
रियलाइज, जहां आपने डिविनाइज किया ऑटोमेटिकली उसको रियलाइज,
मतलब ऐसा कि जैसे शावर
आ रहा है, रियलाइजेशन, एक्चुअली आप उसको फील करेंगे,
क्योंकि सुप्रीम से जब ये एनर्जी आती है, ये पावर आती है, तो सारे थॉट्स ऑटोमेटिकली प्योर एंड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वैसे भी डॉक्टर साहब देखा जाए तो मेडिटेशन को कहा भी गया है कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जैसे कहते हैं मेडरी, और इसका लिटरल मीनिंग कहा जाता है हीलिंग
प्रोसेस।
तो ये जो आपने इतना इजी प्रोसेस, 5-step process बताया, जिसको आप शॉर्ट में फटाफट रिपीट कर पाएंगे हमारे लिए? 5 steps।
हाँ जी, फर्स्ट है इंटरनलाइज, सेकेंड इज चैनलाइज, थर्ड इज विजुअलाइज, फोर्थ इज डिविनाइज, एंड फिफ्थ इज रियलाइज।
और ये रियलाइजेशन की स्टेट पे अगर व्यक्ति पहुंच जाता है तो रियली लाइफ जो है सच में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, थॉट्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और ना केवल हम लेकिन हमारे साथ रहने वाले, हमारा परिवार, हमारा समाज और शायद विश्व भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपके साथ चर्चा कर हमें बहुत आनंद आया, आपने ऐसे गंभीर विषय पर बहुत ही सूक्ष्म रूप से भी प्रकाश डाला, और मैं समझता हूं कि दर्शकों ने इसका बहुत लाभ उठाया होगा। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर गिरीश पटेल से, हमारा चर्चा था थॉट पा, माइंड पा, राइट थिंकिंग एंड वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने देखा कि मन का, विचारों का हमारे जीवन के हर पहलू पर कितना प्रभाव पड़ता है। इनफैक्ट देखा जाए तो जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, पर्पसफुल बनाने के लिए, विचारों का सकारात्मक होना, पॉजिटिव होना, राइट थिंकिंग करना और कुछ एक्सटेंट तक एलिवेटेड थिंकिंग करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी तरह बताया कि कैसे मेडिटेशन का, जो वो पिछले 30 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ, कितना हमारे लाइफ में फायदा हो सकता है। केवल 5 मिनट की जरूरत है, आपको देना है केवल समय। तो आज ही समय है कि आप अपने विचार, अपना जो एटीट्यूड है उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, इस राजयोग का पूरा अभ्यास करें। हम अपना अगला एपिसोड लेकर फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।